आज है 28 नवंबर दिन शनिवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूं सुशीला सिंह। नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा, देश केवल संविधान के अनुसार चलेगा।
सरकार का एक ही धर्म होता है, इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, भारत का संविधान। संविधान से ही चलेगा।
अपने भाषण के दौरान क्यों नरम दिखे प्रधानमंत्री।
ऑपोजिशन सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप कट्टरवाद ताकतों को बढ़ावा दे रहे हो, तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि मोदी साहब ने काफी कोशिश की एक सही पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बनाने की।
अमेरिका के कोलोराडो में हुए हमले में 11 लोग घायल, हमलावर हुआ गिरफ्तार। होगी समाचार पत्रों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि बहुमत की सत्ता से ज्यादा अहम है सर्वसम्मति। उन्होंने कहा कि सरकार का एक ही धर्म है और वो है इंडिया फर्स्ट। नाइजीरिया के कानो राज्य में शिया मुसलमानों के जुलूस में हुए एक आत्मघाती बम विस्फोट में 21 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों और आयोजकों ने बीबीसी को बताया कि एक व्यक्ति को बम के साथ गिरफ्तार किए जाने के कुछ देर बाद ही धमाका हो गया। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ नाइजीरिया के मोहम्मद तुरी के अनुसार इस हमले में कई लोग भी घायल हुए हैं। समाचार एजेंसी AFP ने बताया कि हमलावर भीड़ में घुस गया और पकड़े जाने से पहले ही उसने विस्फोट कर दिया। पोप फ्रांसिस इस वक्त युगांडा के दौरे पर हैं। उनके अफ्रीका दौरे का ये दूसरा पड़ाव है, जिसमें सैन्य बैंड, राजनीतिज्ञ और गिरिजाघरों के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नाइजीरिया की संसद में अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अफ्रीका की तरफ हो। उन्होंने कहा, मेरी इस यात्रा का मकसद ही यही है कि दुनिया का ध्यान अफ्रीका की तरफ जाए, लोग इसके वादों, उम्मीदों, मेहनत और उपलब्धियों पर गौर करें। मैं चाहता हूं कि लोग अफ्रीका को उम्मीद के महाद्वीप के रूप में देखें। पोप फ्रांसिस के शब्द। अमेरिका के कोलोराडो शहर में हुई गोलाबारी में 11 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें 5 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार ये हमलावर एक जन्म नियंत्रण क्लिनिक के अंदर से पुलिस पर गोलियां चला रहा था। पुलिस ने ये जानकारी दी है कि इस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय पेनरोज अस्पताल ने कहा कि उनके यहाँ इस हमले में घायल हुए 5 लोग हैं। हमलावर के साथ मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। इससे पहले शहर के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। इंटरपोल ने फ्रांस के 3 नागरिकों के खिलाफ वारंट जारी किया है, जिनमें एक राजनीतिज्ञ भी शामिल हैं। इन पर आरोप है कि उन्होंने 2 फ्रांसीसी पायलटों को डोमिनिशन रिपब्लिक से भागने में मदद की थी, जो कि ड्रग तस्करी के आरोपी थे। डोमिनिशन रिपब्लिक के अभियोजकों ने इंटरपोल से ये वारंट जारी करने की अपील की थी। आरोपी पायलटों को 680 किलो कोकीन के साथ पुलिस ने पकड़ा था। दक्षिण श्रीलंका के सभी स्कूल राजेश्वरन सेंथुरन के सम्मान में एक दिन के लिए बंद रहे। 18 साल के राजेश्वरन ने गुरुवार को तमिल कैदियों की रिहाई की मांग करते हुए ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी थी। तमिल प्रांत की सरकार ने राजेश्वरन की मौत के बाद इलाके को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। राजेश्वरन सेंथुरन ने मरने से पहले एक नोट लिखा था कि सिंघली बहुसंख्यक केंद्र सरकार 200 से अधिक राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की जरूरत को महत्व नहीं दे रही है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। अमेरिका के कोलोराडो में हुए हमले में 11 लोग घायल हो गए हैं और दमदार महिलाओं पर बीबीसी की खास सीरीज में आज आपको मिलवाएंगे महिला किसान से, लेकिन पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद में कल संविधान पर हुई चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई गर्मा गर्म बहस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम में लोकसभा में कहा कि बहुमत की सत्ता से ज्यादा अहम है सर्वसम्मति। उन्होंने कहा कि सरकार का एक ही धर्म है और वो है इंडिया फर्स्ट, और सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है संविधान। देश केवल संविधान के अनुसार ही चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान ऐसे समय आया है जब भारत में असहिष्णुता के मुद्दे पर राजनीति चरम पर है और चिंता का माहौल है। एक रिपोर्ट के साथ संदीप सोनी।
संविधान दिवस और भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर लोकसभा में दो दिन से जारी चर्चा पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार संविधान के हिसाब से ही काम करेगी।
सरकार का एक ही धर्म होता है, इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, भारत का संविधान। देश संविधान से ही चलेगा।
संविधान को अपनी सरकार का मार्गदर्शक बताने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के प्रति नरम शब्दों का इस्तेमाल करके मानो संकेत दे दिया कि उनकी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी दलों से टकराव नहीं चाहती है।
इस देश में जितनी सरकारें बनी हैं, सब सरकारों ने, जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान से ये देश आगे बढ़ा है। सब सरकारों के योगदान से आगे बढ़ा है। आप भले मानते हो हम ऐसे एक दूसरे के दुश्मन जैसे लगते हैं, लेकिन कभी संसद में आके देखिए हम कैसा एक फैमिली की तरह बिहेव करते हैं, कितना अपनापन हमारे बीच होता है।
संसद में विपक्षी दलों के सदस्यों के बीच अपनेपन की बात के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातों बातों में संकेत दे गए कि भारतीय संविधान जो है जैसा है बहुत अच्छा है और इसमें किसी तरह के बदलाव की कोई जरूरत नहीं है।
भारत जैसे देश का संविधान बनाना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। यहाँ ईश्वर में विश्वास करने वाले भी हो और ईश्वर को नकारने वाले भी लोग हो, यहाँ प्रकृति को भी पूजा करने वाले हो और पत्थर में परमात्मा के देखने वाले भी लोग हो, ऐसी विविधताओं से भरा। वहां के लोगों के एस्पिरेशंस क्या होंगे, उनकी आकांक्षाएं क्या होगी, उसको एक बैठ करके सोच करके बनाना। आज भी हम एक आध कानून बनाते हैं, दूसरे ही सत्र में उसी कानून में एक शब्द रह गया, ठीक करने के लिए वापिस लाना पड़ता है।
लोकसभा में अपने लगभग 70 मिनट के संबोधन के बाद सरकारी निवास 7 रेस कोर्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अलग से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद ये माना जा रहा है कि मोदी सरकार गुड्स एंड सर्विसेज बिल पर कांग्रेस के कठोर रुख को नरम बनाना चाहती है। बहरहाल संसद सत्र के पहले दो दिन संविधान पर चर्चा में बीत गए और अब सरकार की असली परीक्षा सोमवार से शुरू होगी, क्योंकि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। संदीप सोनी, BBC दिल्ली।
तो जैसा कि आपने संदीप सोनी की रिपोर्ट में सुना, कल नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से चाय पर मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में अरुण जेटली ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से संसद के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई ठीक से चले और विधायी कार्य चर्चा के बाद पारित हो सके, इस पर चर्चा हुई। लेकिन संसद में सरकार की असली परीक्षा सोमवार को होगी। कल नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में चर्चा का जवाब जिस तरह से दिया, उसमें जो नरमी थी, इन सब के क्या मायने हैं, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने बात की वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन से।
नहीं, मुझे लगता है कि मोदी साहब के आगे एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस विंटर सेशन में जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है सरकार पारित करना चाह रही है, खासतौर पर GST का, विपक्षी दल के साथ, खासतौर पे जो राज्यसभा में जो उनका दबाव है, तो उनके साथ रिश्ता वो ठीक या बेहतर बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये एक चैलेंज था उनके लिए, और जो स्पीच में जो थोड़ी सी जो ऑपोजिशन के प्रति जो एक नरमी सी या नरम सा रवैया दिखाई दिया, वो मुझे लगता है कि उसके पीछे यही राज था। लेकिन इस सेशन का जिस तरह से पिछले दो दिन में डिबेट चला और जिस तरह से राजनाथ सिंह ने कुछ चीजों को उठाया, सेक्युलरिज्म पे जो विवाद छेड़ने की कोशिश की गई, खासतौर पे इस संदर्भ में कि ऑलरेडी जो है ऑपोजिशन सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप कट्टरवाद ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं, तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि मोदी साहब ने काफी कोशिश की एक सही पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। लेकिन किस हद तक वो एक भाषण के जरिए सफल होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि साथ में जो इनका पहल है मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी से मिलने का, ये भी एक तरह से इशारा करता है कि मोदी साहब स्वयं चिंतित हैं कि ये सेशन ठीक ठाक चले और जो GST का जो मामला है और जो चीजें हैं जो सरकार पारित करना चाहती है, वो ठीक ठाक आगे जो है वो कार्रवाई इस पे वो कर पाए।
ये जो कांग्रेस की तरफ से कुछ आपने नोटिस किया होगा सदन में, नेताओं की मुख मुद्रा, कुछ बॉडी लैंग्वेज कुछ सुस्त से नज़र आए या चुस्त से नज़र आए, बैकफुट पे नज़र आए, या ये सब खामोशी से सोमवार का इंतजार कर रहे हैं?
बीजेपी के दाव पे सब नज़र आ रहे हैं कि वो ऑपोजिशन को थोड़ा सॉफ्टन करके वो चाह रहे हैं कि मंडे से जो जिस तरह से सेशन चलेगा उसमें जो लेजिस्लेटिव काम है, जो कानून पास करने का जो काम है, वो उस एजेंडा को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस का अभी तक रुख जो है, अगर हम इस चीज को पहचान पा रहे हैं, तो कांग्रेस ने अभी तक नरमी नहीं दिखाई। कांग्रेस का रुख अभी भी एक सख्त रुख अपना रहा है। लेकिन जो जिस तरह से मोदी साहब ने बातों को रखा, हालांकि विचारधारा वही है, सियासत भी वही है, पॉलिटिक्स भी वही है, लेकिन पेश करने का तरीका एकदम अलग। खास तौर पे जिस तरीके से उन्होंने अपनी अपने भाषण को खत्म किया, आइडिया ऑफ इंडिया जो फ्रेज वो बार बार यूज करते गए, नाउ ये फ्रेज जो है एक तरह से वो जो सेक्युलरवाद ताकते हैं उनको कभी कभार कोसते हैं कि भाई आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में आप सिर्फ सेक्युलरिज्म, सिर्फ जो है प्रगतिशील या सोशलिस्ट विचारों की बात करते। तो उन्होंने अनेक जो है संस्कृत और ये दोहे और मुहावरों का इस्तेमाल करके ये स्थापित करने की कोशिश की कि भाई आइडिया ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो इस तरह से ये तो संघ परिवार का हमेशा क्लेम रहा है, हालांकि संविधान के लिखने में और फ्रीडम स्ट्रगल में इनका वैसे कोई खास किरदार नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी साहब ने एक काफी अच्छे तरीके से इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की कि भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास और भारतीय परंपराओं को हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझता, हम ही हैं जो चीज को समझते हैं और इस बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं।
वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन से बात कर रहे थे संदीप सोनी। अमेरिका के कोलोराडो शहर में हुई गोलीबारी में करीब 11 लोग घायल हुए, जिसमें 5 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार ये हमलावर एक जन्म नियंत्रण क्लिनिक के अंदर घुस गया था और वहां से पुलिस पर गोलियां चला रहा था। पुलिस ने ये जानकारी दी है कि इस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन था ये व्यक्ति और इसने क्यों ये हमला किया, जानने के लिए सीधा चलते हैं वॉशिंगटन बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश, क्या जानकारी मिल पाई है अभी तक?
देखिए सुशीला, संदिग्ध बंदूकधारी लगभग 11:30 सुबह के आसपास कोलोराडो स्प्रिंग शहर के प्लैंड पेरेंटहुड जो संस्था है, परिवार नियोजन से जुड़ी ये संस्था है, अमेरिका की बेहद अहम गैर सरकारी संस्था है, उसकी इमारत में घुसा और गोलियां चलाई, जिसमें जैसा कि आपने अभी बताया 5 पुलिस वालों समेत कम से कम 11 लोग घायल हुए हैं। कई घंटों तक रुक रुक कर चली गोलीबारी के बाद बंदूकधारी को जिंदा पकड़ा गया। वो कौन है, उसकी मंशा क्या थी, क्या उसके निशाने पर प्लैंड पेरेंटहुड के कर्मचारी और वहां आने वाले लोग थे, ये भी अभी पुलिस स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह पाई है। इस बारे में इसमें अभी कुछ भी नहीं पता चल पाया है। यहाँ ये बताना चाहूंगा कि प्लैंड पेरेंटहुड जो है ये गैर सरकारी संस्था है, जिसे सरकार से भी आर्थिक मदद मिलती है, और ये संस्था गर्भपात, गर्भ निरोधक, सेक्स शिक्षा जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की मदद के लिए जानी जाती है। और कई ऐसे धार्मिक संगठन हैं जो इसके खिलाफ हैं, क्योंकि वो गर्भपात को धर्म के विरुद्ध मानते हैं। तो एक शक ये भी है कि संभव है कि बंदूकधारी किसी धार्मिक गुट से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन पुलिस फिलहाल कुछ भी इस पर स्पष्ट तौर से कुछ भी नहीं कह रही है अभी।
जी, तो इस मामले पर
जी पुलिस का ये भी कहना है कि बंदूकधारी एक बैग लेकर इमारत में के अंदर घुसा था, तो ये भी देख रहे हैं कि कहीं उसने कोई विस्फोटक या कोई ऐसी सामग्री तो नहीं छोड़ दी है इमारत में, तो इसलिए इमारत की घेराबंदी अभी भी जारी है। पुलिस की जरूर काफी तारीफ हो रही है कि उन्होंने काफी धैर्य का परिचय देते हुए कई घंटों तक चले इस संघर्ष के बाद बंदूकधारी को वो जिंदा पकड़ पाने में कामयाब रहे हैं।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय। भारत में कानून ने औरतों को ज़मीन पर हक बराबर का दिया है, पर असल में बहुत कम औरतें ज़मीन की मालिक बन पाती हैं। लेकिन कुछ हालात के कारण और कुछ अपनी दिलेरी से औरतों ने ज़मीन पर अपने हक की एक नई इबारत लिखना शुरू किया है। छोटे लेकिन बढ़ रहे इन महिला किसानों के कुनबे पर रूपा झा की ये रिपोर्ट।
वैशाली जयवंत भालेराव, उम्र 40 साल, यही नाम है महाराष्ट्र के पेट गांव की इकलौती महिला किसान का। वे अपनी 5 एकड़ की खेती में कपास, सोयाबीन और दाल उगाती हैं। मैं हैरान हूँ उनके आत्मविश्वास और खेती के बारे में उनकी समझ को देखकर। खेती की बारीकियाँ वे ऐसे समझाती हैं जैसे शुरू से बस यही किया हो।
शादी होती ना, पर ये सब कुछ नया है। 20 साल की उम्र में जब ब्याह कर वैशाली आई थी तो ऐसी भूमिका की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी।
लोग छोड़ देते हैं, आप नहीं छोड़ी।
लेकिन लगभग 6 साल पहले उनके पति ने फसल बर्बादी और बढ़ते कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली। वक्त तो गुजर रहा है पर 6 साल पहले के उस दिन पर धूल की कोई परत नहीं जम पाती है।
वो कहा करते थे, परेशान होते थे कि हमारे ऊपर कर्जा है, बच्चों को पढ़ाना है, गृहस्थी चलानी है, बहुत चिंता करते थे। मुझे भी बुरा लगता था, कोई सहारा ना हो तो आपको और मजबूरी महसूस होती है। हर इंसान अलग तरीके से स्थिति से निपटता है। उन्होंने ये सब कुछ, सारी परेशानी अपने ऊपर ले ली, दिल से लगा लिया। ये सब बोलते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उन्होंने हार मान ली पर मुझे तो जीना है बच्चों के लिए।
वैशाली ने तय किया कि पति की आत्महत्या उनके बच्चों के भविष्य की हत्या नहीं कर सकती। वे जिएंगी, लड़ेंगी और जीतेंगी।
मैं 33-34 साल की थी जब ये दुर्घटना हुई। कोई नहीं चाहता जिंदगी की सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना। खेती का ख्याल करो, घर देखो, लेकिन मुश्किल समय था, मुझे करना ही पड़ा। कई बार मैं भगवान को कोसती कि जिंदगी मेरे लिए ही इतनी मुश्किल क्यों बना दी। मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं था सिवाय मेरी माँ के।
आज भी उनको सालता है। 14 साल की पायल आज भी उस खालीपन से समझौता नहीं कर पाई है।
कभी कभी याद आती है मेरे पापा।
सच तो ये है कि महाराष्ट्र में ऐसे सवालों से जूझता ये अकेला परिवार नहीं है। सेंसस के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 दशकों में कम से कम 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह संख्या कम कर आकी गई है क्योंकि हर मामला पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज भी नहीं होता। वैशाली के पति के गुजरने के बाद उन्हें जमीन का मालिकाना हक मिला। कानून की नजर में जमीन पर औरतों का बराबर का हक है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। वैशाली ने उस एक मौके को हाथ से नहीं गवाया। जमीन के उस छोटे से टुकड़े को वो जोत रही हैं, इतना कमा लेती हैं कि बच्चों को पढ़ा लिखा सके और दाल रोटी मुहाल ना।
हिंदुस्तान के खेतों में महिलाओं का, औरतों का काम करना कोई नई अनोखी बात नहीं, लेकिन इस तरह से उनका ट्रैक्टर चलाना जरूर अनोखा है। दरअसल यहाँ अब भी महिला किसान नेपथ्य में है। जमीन पर उनका अधिकार, जमीन से जुड़े मसलों पर उनका दखल बहुत बहुत कम है, बहुत सीमित है। लेकिन करमजीत और रिम्पी जैसी महिला किसान बदलाव की एक नई इबारत जरूर लिख रही है।
बड़ी बहन रिम्पी ने आईटी सेक्टर की नौकरी छोड़ी सोयाबीन, गेहूं और आंवला उगाने के लिए।
जब पापा एक्सपायर हुए तब सभी ये कहते थे कि ये तो लड़कियां, ये क्या करेंगी, ये ससुराल चली जाएंगी, भैया भाग लेंगे, तो ये मुनाफे पे दे देंगे या फिर बेच के वापस पंजाब चले जाएंगी, मम्मी भी नहीं कर पाएगी। तो मेरे लिए वो एक चैलेंज हो गया कि मतलब अगर भैया नहीं कर सकते तो हम लड़कियां हैं, तो हमारी जगह अगर लड़का होता, उनका बेटा होता, तो क्या वो नहीं करता क्या? तो इसलिए मेरे लिए वो चैलेंज था कि मुझे ये करके दिखाना है।
भारत अब भी खेती पर निर्भर देश है। 85% महिलाएं खेती से जुड़ा हुआ काम करती हैं और धीरे धीरे खेती में औरतों की मौजूदगी बढ़ रही है। रिम्पी और करमजीत महिला किसानों के इस छोटे लेकिन बढ़ते हुए समुदाय की अगुवाई कर रही हैं। तमाम विरोधों के बावजूद
हम तो जवाब देते, टाइम से उनकी शादी करते, साल भेजते। हम तो बाहर बच्चियों को रोटी लेने नहीं जाने देते हैं, यहाँ घर पे रहती है। आदमी काम करते हैं तो घर पे आके रोटी खाते हैं, ये नहीं है कि उनके पीछे रोटी जाएगी, बाहर नहीं निकलने देते हम दूर तो।
वो टेंशन नहीं है।
लेकिन रिम्पी बेखौफ अपने रास्ते पर चल रही हैं क्योंकि उन्हें मंजूर नहीं लड़कियों के लिए समाज द्वारा बनाए गए रास्तों पर चलना।
सबसे पहले तो यही है कि यहाँ पे आपको कहीं भी चारों ओर देखिए आप कहीं आपको कोई लेडीज नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है क्योंकि यहाँ सब जेंट्स एरिया है, मंडी गाँव में जो ये लोग, जैसे मैंने ये सूट नहीं पहना हुआ कि मैंने भी जेंट्स की तरह कपड़े पहने हुए ताकि मतलब मुझे दूर से देख के उनको ये नहीं लगे कि हाँ ये लड़की यहाँ पे क्या लेने आई है, तो मतलब वो उस चीज को देख के वो ज्यादा अट्रैक्ट, तो कम से कम दूर से तो उनको देख के नहीं लगे कि यहाँ कौन आ रहा है।
रिम्पी के साहस के पीछे उनकी माँ का साथ है जो ये मानती हैं कि लड़कियों को केवल आजादी की जरूरत है।
बेटियों को टाइम दो, ये है सबसे बड़ी बात, तो ये है कि बेटियों को टाइम दो। अब इनके पास टाइम नहीं होगा तो क्या करेगी हैं? आज से 10 साल पहले इसके पापा जी शादी कर देते, इसके साथ की लड़कियां हैं, उसके दो दो तीन तीन बच्चे हैं, तो अब वो बच्चे संभालेंगी कि घर का करेंगी कि वो आदमी के साथ करेंगी।
और उधर महाराष्ट्र में वैशाली भी परंपराओं के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है।
मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को वो सब झेलना पड़े जो मुझे झेलना पड़ा। उसे पूरी शिक्षा मिलनी चाहिए। पुराने ख्यालात के लोग इसे जरूरी नहीं समझते, लेकिन देखिए मेरे लिए मुश्किलें कितनी बढ़ गईं। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी के साथ ये सब हो। मैं उसे पूरी शिक्षा दूंगी ताकि वो शुरू से आर्थिक रूप से सबल हो, किसी पर निर्भर होने की जरूरत ना पड़े।
आजाद, सशक्त और फैसले लेने का हौसला रखने वाली ये औरतें, ये हैं जमीन की औरतें। रिम्पी और करमजीत ने खेती करने का फैसला लिया। वे धनी परिवार से हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वैशाली के पास ऐसे अवसर नहीं थे। पर वो चाहती है अपनी बेटी को ये सब कुछ मुहैया कराना, अपने फैसले खुद लेने की आजादी और उसका अधिकार। ये सब कुछ वो अपनी बेटी के लिए चाहती हैं। ये सभी औरतें अपने अंदाज में उस परिभाषा का विस्तार कर रही है जो गढ़ रही है नए भारत में जमीन से जुड़ी औरतों के नए मायने। रूपा झा, बीबीसी हिंदी।
बीबीसी इंडिया बोल।
अच्छी लड़की घरेलू संस्कार होने चाहिए, दुनियादारी में अच्छी समझ होनी चाहिए।
अच्छे घर की लड़कियां नहीं जाती हैं नशे की तरफ।
अच्छी लड़की के अंदर घर के काम करने के सारे गुण होने चाहिए। घर का काम, बर्तन वगैरह धोना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना।
आपकी नजर में अच्छी लड़की की क्या परिभाषा है? इस बार इंडिया बोल में बात होगी इसी विषय पर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 28 नवंबर को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1811027001 पर। इंतजार किस बात का?
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब खेल और खिलाड़ी के साथ आदेश कुमार गुप्त।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से।
सिर्फ एक विकेट चाहिए, इस मैच को जीतेंगे, श्रृंखला को भी जीत जाएंगे। और जिस विजय रथ की बात हम कर रहे थे साउथ अफ्रीका की, उस पे रोक लगाएंगे। पिछले 9 वर्षों में घर के बाहर अभी तक एक भी सीरीज हारे नहीं है, 15 सीरीज खेले उन्होंने। यहाँ पे एक मौका भारत के पास।
और नागपुर में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच को कल तीसरे ही दिन भारत ने अपनी गिरफ्त में किया। दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 310 रनों का लक्ष्य था, लेकिन उसकी दूसरी पारी 185 रनों पर समाप्त हो गई। ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने जैसे ही आखिरी बल्लेबाज मॉर्ने मोरकल को बोल्ड किया, वैसे ही तमाम भारतीय खिलाड़ी खुशी से उछल पड़े और भारत ने 124 रन से मैच अपने नाम किया।
विकेट नंबर 7 अपने नाम किया अश्विन ने। शानदार जीत भारत के लिए और इसी के साथ इस श्रृंखला को भी जीत लिया है भारत ने।
और अश्विन भारत की जीत के नायक रहे और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को एक के बाद एक करारे झटके देते हुए 7 विकेट अपने नाम किए, जिसके लिए उन्होंने 66 रन दिए। उनके अलावा लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने 51 रन देकर बाकी बचे 3 विकेट हासिल किए। इससे पहले कल दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट पर 32 रन से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन नियमित अंतराल पर उसके विकेट गिरते रहे। केवल एक बड़ी साझेदारी हाशिम आमला और फेफ डु प्लेसिस के बीच हुई, जब उन्होंने पांचवें विकेट के लिए 72 रन जोड़े। कप्तान आशी मामला और फेब डुप्लेसिस ने समान रूप से 39-39 रन बनाए। जेपी ड्यूबिनी ने 19 और डीन एल्गर ने 18 रन बनाए। एबी डिविलियर्स केवल 9 रन बनाकर आर अश्विन की कैरम बोल पर बोल्ड हो गए। इस तरह से भारत ने दक्षिण अफ्रीका के पिछले 9 साल से विदेशों में टेस्ट सीरीज न हारने के गुरूर को भी तोड़ दिया और 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। दोनों टीमों के बीच चौथा और आखिरी टेस्ट मैच 3 दिसंबर से दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में खेला जाएगा। उधर टेस्ट क्रिकेट के 138 साल के इतिहास में एक नया पन्ना कल जुड़ा जब एडिलेड में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच डे नाइट टेस्ट मैच के रूप में शुरू हुआ और वो भी हरी सीम वाली गुलाबी गेंद से। इस मैच में कल टॉस न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए उनकी पहली पारी 202 रन पर सिमट गई। केवल टॉम लैथम ही 50 रन बनाने में कामयाब रहे। दूधिया रोशनी से नहाए स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ने 3-3 और सिडल तथा स्पिनर नाथन लियन ने 2-2 विकेट आपस में बांटे। इसके बाद कल स्टंप के समय तक ऑस्ट्रेलिया ने भी 54 रन पर अपने 2 विकेट खो दिए थे। इस बेमिसाल प्रयोग को देखने ऑस्ट्रेलिया जा पहुंचे खेल समीक्षक अयाज मेमन ने बीबीसी से खास बातचीत में कहा,
गजब का एक्सपीरियंस था। प्लेयर्स दोनों ही टीम के मुझे लग रहा है थोड़े से नर्वस थे, अंडर प्रेशर थे, दबाव में थे और ये जाहिर हो गया मैच में भी। न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हो गई टॉस जीतने के बाद और ऑस्ट्रेलिया भी कुछ खास उनकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, 54 पर 2 है। ये बताता है कि गेंद और इन कंडीशंस में गेंदबाजों को काफी मदद मिली है। बहरहाल बात रही इस मैच की, 47,441 लोग आए थे दर्शक, के जहन में यही था और कुछ पूछताछ हुई पीटर सिडल और ट्रेंट बोल्ट के जब वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद, क्या कोई दिक्कत हुई, तो दोनों का ये मानना था कि अंडर लाइट जब बत्तियां जल जाती है फ्लड लाइट तो गेंद थोड़ा स्विंग ज्यादा हो रही है, लेकिन सीम दिन भर रही और जो उसका शाइन है वो भी नहीं इतनी आसानी से निकला। ये एक परेशानी थी सब प्लेयर्स को कि शायद नजर नहीं आएगा, घस जाएगा बॉल, ग्रे कलर हो जाएगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। जहां तक पॉलिश करते हैं गेंद को तो फील्डर्स ने इस पे काफी मेहनत की, तेज गेंदबाज स्विंग बोलर्स और स्पिनर्स के लिए ये कंडीशन फायदेमंद थी और गेंद सबको नजर आ रही थी या नहीं सब कह रहे थे कि नजर आ रही थी, लेकिन मेरा मानना यह कि टेलीविजन व्यूइंग बहुत सही हो गई है क्योंकि वहां पर कॉन्ट्रास्ट ऑफ कलर जो है पिंक और ग्रीन सफेद कपड़े ये बहुत सही नजर आ रहा है, ये बहुत से लोगों का कहना था।
उधर हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल्स के मुकाबले कल से रायपुर में शुरू हुए जहां मेजबान भारत को अर्जेंटीना ने 3-0 से मात दी। आज भारत जर्मनी का सामना करेगा। इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 8 टीमें शामिल हैं जिनमें भारत के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन और नीदरलैंड्स शामिल हैं। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
खेल और खिलाड़ी लेकर आए थे आदेश कुमार गुप्ता और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का। अमल समाचार पत्रों पर नजर डाल चुके हैं, क्या कहते हैं अखबार
जी? सुशीला, आज की मुख्य खबरों की बात करें तो हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जो भाषण दिया और कांग्रेस की उन्होंने जिस तरह से तारीफ की वही अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। और अन्य खबरों की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर और समेत अन्य अखबारों में क्रिकेट में भारत की 11 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से जो टेस्ट सीरीज जीते हैं उसकी खबर हर अखबार में है। और इसके अलावा दैनिक भास्कर में फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान भी है सुर्खियों में, जिसमें उन्होंने पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताया है। इसमें उन्होंने कहा कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा, जबकि ये वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है और हमारे साथ रहेगा। वहीं दैनिक भास्कर और अमर उजाला में हरियाणा की खबर है जिसमें भाजपा के एक मंत्री अनिल विज एक बैठक ले रहे थे जिसमें मुद्दा अवैध शराब की बिक्री का था। उनके साथ महिला एसपी संगीता कालिया भी मौजूद थी और इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हुई और विज ने उन्हें गेट आउट बोला, जिसके जवाब में एसपी कालिया ने बाहर जाने से मना कर दिया। लगभग सभी अखबारों में है ये खबर। और वहीं हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला और टाइम्स ऑफ इंडिया में 22.5 करोड़ रुपए की चोरी को दिल्ली पुलिस ने किस तरह से 12 घंटे के भीतर सुलझाया है उसको प्रमुखता से शामिल किया गया है। इसमें आरोपी एटीएम में कैश वैन भरने वाली वैन का ड्राइवर था जिसे वो लेके फरार हो गया था।
जी, समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमल। और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि बहुमत की सत्ता से ज्यादा अहम है सर्वसम्मति। उन्होंने कहा कि सरकार का एक ही धर्म है और वो है इंडिया फर्स्ट। नाइजीरिया के कानो राज्य में शिया मुसलमानों के जुलूस में हुए एक आत्मघाती बम विस्फोट में 21 लोगों की मौत हो गई। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार हमलावर भीड़ में घुस गया और पकड़े जाने से पहले ही उसने विस्फोट कर दिया। पोप फ्रांसिस इस वक्त युगांडा के दौरे पर हैं। उनके अफ्रीका दौरे का ये दूसरा पड़ाव है जिसमें सैन्य बैंड, राजनीतिज्ञ और गिरजाघरों के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अमरीका के कोलोराडो शहर में हुई गोलाबारी में 11 लोगों के घायल होने की खबर है। इसमें 2 लोग मारे भी गए हैं। घायलों में 5 पुलिसकर्मी शामिल हैं और हमलावर को पकड़ लिया गया है। इंटरपोल ने फ्रांस के 3 नागरिकों के खिलाफ वारंट जारी किया है जिसमें एक राजनीतिज्ञ भी शामिल हैं। BBC समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।